ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में प्रातः भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पांचवें स्कंद के पहले अध्याय का 17वां श्लोक, उसका आज श्रवण वर्णन करेंगे। पांचवां स्कंद श्रीमद् भागवत का पहले 14 अध्यायों में ब्रह्मा जी के पौत्र स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन है और 15वें अध्याय से आगे 5 अध्यायों में खगोल और 5 अध्यायों में भूगोल, तो पृथ्वी का तारामंडल का और फिर अंतिम अध्यायों में नरक का वर्णन है। ऐसे 5वें अध्याय को प्रायः स्थिति भगवान की स्थिति लीला कहते हैं। स्थिति का मतलब ये सारा संसार भगवान में स्थित है। वैकुंठ विजय कहते हैं स्थिति अथवा वैकुंठ विजय। सो हम पहले अध्याय के 17वें श्लोक का आज पाठ करेंगे। ये स्थान है नारद जी का आश्रम और नारद जी के आश्रम में स्वयंभू मनु का बड़ा बेटा ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत नष्टी ब्रह्मचारी रहकर और संन्यास लेने की तैयारी कर रहे थे। तो छोटा बेटा उत्तानपाद ने राज किया। 4थे अध्याय में हमने उसके वंश का वर्णन सुना। उत्तानपाद फिर प्रियव्रत और सॉरी उत्तानपाद के बाद ध्रुव और फिर ध्रुव वंश में भगवान का एक अवतार पृथु महाराज और फिर प्राचीन वरहित और प्रचेता, यहाँ तक हमने ध्रुव वंश का वर्णन सुना। तो 5वें स्कंद में बड़े बेटे प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। तो स्वयंभू मनु ने आके अपने बेटे को कहा, बेटा अब बहुत हो गया शिक्षा, ये तो वैदिक पद्धति है, बच्चा पहले गुरुकुल में जाएगा, गुरुजी के पास शिक्षा लेकर इंद्रियों को संयम में करके मन को एकाग्र करके फिर संसार का कार्य भी करेगा, राजपाठ भी करना चाहिए। तो अब कब तक मैं राज करूँगा, स्वयंभू मनु कहते हैं, मेरा तुम्हारे छोटे भाई ने तो अपना पूरे वंश के साथ राज किया, तो अब आप चलो बेटा राज करो। प्रियव्रत ने कहा, मैं राज नहीं करूँगा, मैं तो यही नारद जी के आश्रम में गुरु जी की सेवा करूँगा, भगवान का भजन करूँगा। तो स्वयंभू मनु चले गए ब्रह्मा जी के पास, कहा पिताजी हमने तो आपकी आज्ञा पालन किया, ग्रस्त में प्रवेश किया और प्रजा बढ़ाने का आपका जो कार्य था उसको किया, हमारा बेटा तो नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के आए, और ब्रह्मा जी आज जैसे कोई कहीं प्रधानमंत्री जाता है तो पूरा उसके साथ और भी बहुत सारे साथी जाते हैं, अकेला नहीं जाता है, तो अन्य भी देवता गण भी साथ हैं उनके संग। ब्रह्मा जी जब वहाँ आए तो ब्रह्मा जी संबोधन कर रहे हैं प्रियव्रत को। अब ये भागवत में ऐसा प्रचार है कि कहीं कहीं तो नारद जी ऐसा प्रचार करते हैं जैसे दक्ष के पुत्रों को ब्रह्मचारी बना देते हैं, और कहीं कहीं ऐसे प्रचार होता है कि ब्रह्मचारी को फिर राजपाट करके ग्रस्त बना देते हैं, दोनों काम चलते हैं। तो एक मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहा गया है जिसमें साधु सन्यासी बनना, एक को प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है जिसमें घर गृहस्थी में जाके भी भगवान का भजन किया जा सकता है। तो ये दोनों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्यास लेने से मना कर रहे हैं और कहेंगे आप युद्ध करो और राज करो, और उद्धव को कहते हैं अब घर बार छोड़ के उद्धव गीता में चले जाओ, भद्रिका आश्रम में साधु बन जाओ। तो ये दोनों चीज़ें भागवत में मिलती हैं, दोनों मार्ग, लेकिन दोनों मार्ग से जो भगवान का मार्ग है भागवत में वो भागवत मार्ग है, उसमें चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, कोई बच्चा हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। तो ये जो मार्ग है वो विशेष है। तो ब्रह्मा जी ने जब तर्क दिया और बच्चे को समझाने का प्रयास किया तो प्रियव्रत ने ब्रह्मा को वेद का आचार्य और मनु को स्मृति का आचार्य, तो वेद और स्मृति दोनों खड़े हो गए, भाई मनु की स्मृति है और वेद ब्रह्मा से निकलते हैं, तो वेद तो भगवान के समान है, और वेद का और स्मृति दोनों का आज्ञा पालन करना अपना धर्म माना। लेकिन गुरु नारद भी उधर ही बैठा है और गुरु नारद का पिताजी ब्रह्मा प्रवचन कर रहा है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम राज करो और नारद कह रहे हैं तुम सन्यासी बनो, बाप बोला है, हाँ पिताजी बोल रहे हैं कि राज करो और नारद जी कह रहे हैं नहीं तुम साधु बनो। तो ये एक बहुत बड़ा विचित्र परिस्थिति है, इसमें क्या करना चाहिए। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें क्या करना चाहिए। तो प्रियव्रत ने फिर देखा कि वेद का और स्मृति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, गुरु साधु शास्त्र, तो ये तो शास्त्र है, ये शास्त्र के मूर्तिमान, दोनों व्यक्ति शास्त्र मूर्तिमान खड़ा है, ब्रह्मा मूर्तिमान वेद है और मनु मूर्तिमान स्मृति है, तो इन दोनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने और गुरु जी उनके सुन रहे हैं, वहीं बैठे हैं नारद जी, तो फिर उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, आज्ञा लिया और प्रियव्रत महाराज इस पृथ्वी के राजा हुए, और प्रियव्रत महाराज ऐसे अद्भुत राजा हुए, आगे देखेंगे, काल के ऊपर विजय प्राप्त की। रात को बोला अंधेरा क्यों होता है, जब सूर्य का रथ चलता है पर्वत के चारों ओर, तो इन्होंने अपने रथ के ऊपर चलना शुरू किया, उसी गति से रात को दिन में बदल दिया। तो प्रियव्रत ने काल के ऊपर विजय प्राप्त की और धरती के अंदर उनके रथ के पहियों से 7 समुद्र बने, 7 द्वीप बने और इनके पुत्र 7 द्वीपों के राजा बने। ये प्रियव्रत का बहुत बड़ा, और फिर प्रियव्रत राजपाट किया, पुत्र उत्पन्न किया और फिर वापस नारद जी के आश्रम में चले गए और जाके फिर साधु बने। तो आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें नारद जी और सॉरी ब्रह्मा जी प्रियव्रत को एक सिद्धांत सिखा रहे हैं, और वो सिद्धांत ये है कि बेटा अगर मन और इंद्रियां वश में है तो तुम राज करते हुए भी भगवान को पा सकते हो, और मन और इंद्रियां वश में नहीं है तो तुम वन में जाओगे तो तुम्हारे साथ मन और इंद्रियां तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे ना, तो वहां भी तुम्हारे को भगवान का ध्यान करने नहीं देंगी। तो ये एक सिद्धांत है, आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। भयं प्रमथस्य वनेषु अपि स्यात् यतसासते सशत्तपत् सपत्नः जितेन्द्रियसात्मरतेरबुद्धस्य गृहाश्रम किम नो करोति अवद्यम। भयं प्रमथस्य वनेषु अपि स्यात् यता सते सह षट्सपत्नः। जितेन्द्रियसात्मरतेर्बुद्धस्य ग्रहे आश्रम किं नु करोति अवद्यम्। भयं प्रमथस्य वनेषु अपि स्यात् यतः सा सते सषट्सपत्नः। जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुद्धया बुद्धस्य गृह्याश्रम किं नो करोत्यवद्यम्। पाठ कीजिए। भयं प्रमथस्य वनेषु अपि स्यात् जितेन्द्रियात्मरतेर्बुद्धस्य गृहाश्रमा किं नो करोत्यवद्यम्। भयं प्रमथस्य क्लेशो अपि स्यात् सषट्सपत्नः। जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुद्धस्य गृहेष्वाश्रम किं न करोत्यवद्यम्। यत्सते स्थपत् यतेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुद्धस्य गृहाश्रम किं नो करोत्यवद्यन्। माताजि यं परमतस्य वने पिशा यता सा सते सषट्पत्नः। जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुद्धस्य गृहाश्रम करोति अवद्यम्। भयं प्रमथस्य वनम् अपि स्यात् सते सषट्सपत्नः। केन्द्रियस्यामृतेर्बुद्धस्य गृहाश्रम किं नो करोत्यवद्यम्। भयं परमथस्य, परमथस्य शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए। अर्जुन कहता है मन को वश में करने मुश्किल है, क्योंकि मन कैसा है, परमाथी बलवद दृढ़म चंचलम ही मन कृष्ण परमाथी। परमाथी का क्या अर्थ है, वहाँ कभी एक जगह टिकता नहीं है, इधर उधर भागता रहता है। जैसे मंथन करते हैं ना, मंथन करते हैं कोई चीज़ का तो घूमता रहता है, पंखा चलता है तो इसके पर नहीं दिखाई देते हैं। तो परमथस्य का अर्थ है, प्रभुपाद ने लिखा है, जो भ्रमित है, जो भ्रमित है मतलब जो भ्रमण कर रहा है, जिसका मन एक जगह टिकता नहीं है। तो परमथस्य का मतलब जिसका मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, और वो इस भय से कि मेरा मन शहर में रहूंगा तो बाहर भटकेगा, भयम भय के कारण कि मन मेरा शहर में रहता हूं तो मेरी इंद्रियां और मन मेरे को भटका रहा है, इधर उधर भगा रहा है। वने अपि स्यात्, अगर वन में भी चला जाए, इसका मतलब जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है वो अगर वन में भी चला जाए तो क्या है, यतः स आसते सह षट पत्नियां, वहां उसके साथ भी उसकी छह पत्नियां साथ जाएंगी। षट पत्नियां का मतलब छह पत्नियां कौन सी है, बोला एक मन और पांच ज्ञान इंद्रियां, ये हैं छह पत्नियां। आपका मन और इंद्रियां तो आपके साथ जाएंगी ना, आप जहीं भी जाएंगे, आपका भाग्य भी आप जहां जाएंगे आपके साथ जाएगा, आपके कर्म भी आप जहां जाएंगे आपके साथ जाएगा। तो आप वन में भी जाएं तो आपके साथ ये पत्नियां तो छह की छह चली जाएंगी, एक को छोड़ के जाएंगे और छह साथ ले जाएंगे। ये छठ पत्नियां, ये पांच पत्नियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और छठा मन, वो तो बड़ी बड़ी विषम में डालने वाली पत्नी है, वो तो पतन कराने वाली पत्नी है असल में। वैसे पत्नी का अर्थ है पात्यते इति पत्नी, पतन से बचाए वो पत्नी, पत्नी का अर्थ है जो पति को पतन से बचाए, और पति का अर्थ है जो पत्नी का पालन पोषण करे, पात्यते इति पति, जो अपनी पत्नी का पालन पोषण करे वो पति, और पत्नी का मुख्य धर्म है पति को पतन से बचाए। सो उधर भी जाएंगे तो ये मन और इंद्रियां, ये एक एक व्यक्ति की दो पत्नियां थी, घर में चोर गया उसके घर में चोरी करने, तो दोनों पत्नियां उसको रात को पीट रही थी, एक सर से बाल खींच रही थी, एक टांगों पे लात, तो उसको आ गई हंसी आ गई, तो चोर था पकड़ा गया। तो जब जज के सामने ले गए तो जज ने कहे तुम चोर थे, चोरी करने गए थे, बोला हाँ चोरी करने गया था, बोला तुम्हारे को दंड मिलेगा, बोला जो भी दो दीजिए, दो पत्नियों का पति मत कीजिए, उसका हाल में देख के आया हूँ, बाकी सब दंड चलेगा। और लेकिन यहाँ तो छह की छह साथ चल रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। हम कहते हैं कभी चलो वृंदावन चल के चलते हैं, हमारे लिए वही वन है, लेकिन यहाँ आके भी फिर हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे घर में, क्या फोन के ऊपर सारा ही काम बिजनेस चल रहा है, वैसे वृंदावन में है लेकिन हमारा जो कान में है वो हरी कथा की बजाय फोन में हेलो हेलो आ रहा है। ये हेलो कब से लोगों ने कहना शुरू किया पता है, पहला जिसने फोन बनाया था ना, फोन उसका चालू हुआ तो उसने अपनी पत्नी को फोन किया, उसकी पत्नी का नाम था हेलो, तो उसने कहा हेलो, अभी हम उसकी पत्नी के पीछे अभी तक पड़े हुए, हेलो हेलो। वो हेलो का कोई और मतलब नहीं है, हेलो उसकी पत्नी का नाम था असल में। तो आपको फोन करना है तो हरी बोल करो, कम से कम भगवान का नाम लो, ये हेलो के पीछे क्यों पड़े हो। हम कभी कभी ऐसे बिना सोचे समझे बातें करते रहते हैं। सो छह पत्नियां साथ जाती हैं, ये होगा पहले दो लाइनों का अर्थ। पहले दो लाइनों का अर्थ समझ में आया, आप समझोगे कि हमारा मन जो है इधर शहर में परेशान करता है, तो वन में चले जाए तो मत समझो कि वहां शांति मिल जाएगी, क्योंकि आपका मन आपके साथ जाएगा और ये आपकी इंद्रियां चंचल भी आपके साथ, मन चंचल है और इंद्रियां बस में नहीं है। अब कहते हैं दूसरा पक्ष हमेशा श्लोक का बलवान होता है पहले पक्ष से। दूसरे पक्ष में क्या कहते हैं, जिसकी इंद्रियां वश में है आत्म रतिर, जिसकी रति, रति का मतलब प्रेम, आत्म साक्षात्कार में है, उस आदमी के लिए शब्द लिखा है बुद्धस्य, बड़ा बुद्धिमान है, बुद्धस्य जैसे बुद्धा, जो वन में जाए इंद्रियां और मन वश में नहीं हो वो है बुद्धू, और जो घर में रहते हुए मन और इंद्रियों को वश में करके आत्मचिंतन करता है वो बुद्धा। तो बहुत से लोग बुद्धू बन के वन में जाते हैं लेकिन रहते बुद्धू के बुद्धू हैं। हाँ, बुद्धस्य बुद्धस्य बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धा जिसको कहते हैं, एनलाइटन्ड, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर उसकी इंद्रियां और मन में वश में है तो वो आत्मरति का मतलब है। रति होता, कहते संसार में स्त्री से होती है रति, रति का मतलब होता है पुरुष और स्त्री का संबंध। अब इसने संबंध किससे कर दिया, अपना आत्मा से संबंध कर दिया। अब इसकी रति और प्रेम किस में, बोला आत्म साक्षात्कार में। आत्मरति बुद्धस्य एक भाव तो ये है, एक दूसरा भाव ये है बुद्धस्य बुद्धि को, रति प्रेम आत्मस्य भगवान को भी आत्मा कवि, भगवान से जिसका प्रेम हो जाए, जिसने अपनी बुद्धि भगवान को अर्पण कर दी, ऐसा बुद्धि भगवान को अर्पण करने वाला कौन है, भीष्म पितामह। इति मति उपकल्पिता वित्रषणा, मेरी ये मति जिसमें कोई तृष्णा नहीं है, कोई मन और इंद्रियों का जिसके अंदर चंचलता नहीं है, कृष्ण आप इसको स्वीकार कीजिए। तो आत्मरति का मतलब है बुद्धस्य, बुद्धस्य शब्द आने से उसकी सती मति है। अब भीष्म पितामह कैसा ब्रह्मचारी था, नैष्ठिकी ब्रह्मचारी था ना, वन में गया क्या, राजमहल में रहा, राजमहल में सारे ठाठ बाट और वैभव के साथ, रथ घोड़ों के साथ ब्रह्मचारी रह सका, क्योंकि उसका मन और इंद्रियां वश में थे, और वो उन्होंने ये प्रमाणित करके दिखाया कि मेरी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में ही रति है उसकी। ये भीष्म पितामह के जीवन से बहुत बड़ा, यहाँ इस आधे श्लोक से भीष्म पितामह देखने में आना चाहिए कि रहे तो रहा था राजमहल में, लेकिन मन उनका हमेशा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित था, जो उन्होंने अंत समय अपने मुख से कह दिया कि मेरी बुद्धि में आप निवास करो। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, मुझे बुद्धि दे दो, बुद्धि में मुझे निवास कराओ। मैं ये मन आधस्व मई बुद्धि निवेश, मन में, मन मुझ में लगाओ, मन मेरे पास रखो और बुद्धि में मुझे निवास कराओ, मतलब बिठाओ। अर्जुन ने कहाँ बिठाया श्री कृष्ण को, सारथी की जगह पे, सारथी बुद्धि होता है, अर्जुन ने भगवान को बुद्धि में बिठाया। और अन्य स्थान पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं अर्पित मनो बुद्धिर, तो आपका मन और बुद्धि मुझे अर्पण करो। कौन है जिसने मन अर्पण किया, गोपियों ने कहा मन ले लो कृष्ण हमारा, हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे पास न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, नहीं होगा मन और नहीं होगी चिंता, चिंता तो मन में होती है। और भीष्म पितामह ऐसा भागवत पुरुष है, 12 महाजनों में एक महाजन है, कहता भगवान मेरी बुद्धि आप ले लो, मैं आपको बुद्धि अर्पण कर रहा हूँ। तो ये ऐसे उदाहरण है जिनको मन और बुद्धि भगवान को दे दी, फिर आप कहीं भी रहो क्या कोई अंतर नहीं पड़ता है, जो परेशान करने वाली चीज़ ही आपके पास नहीं है तो क्या करेगा। आगे इसके अंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो सर्प भले विषीला हो लेकिन दांत निकालेंगे तो क्या करेगा, दांत ही नहीं है तो काटेगा कहाँ से, विष आएगा कहाँ से, वो दांत ही विष वाले निकाल दिए हैं। तो ये तो ऐसे महात्मा जो है वो इनका बहुत बड़ा ये आत्मरति बुद्धस्य। सामान्य स्तर के ऊपर तो आत्मरति बुद्धस्य का मतलब है बुद्धिमान वो है जिसकी आत्म साक्षात्कार में मन लगता है, मन संसार में नहीं लगता है, आत्म साक्षात्कार। लेकिन आत्म साक्षात्कार आधा आध्यात्मिक है, आत्म साक्षात्कार का मतलब ये समझना कि मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर मुझे करना क्या है, इसके बाद मेरा संबंध क्या है। प्रेम जब तक नहीं है तब तक कुछ टिकता नहीं है, कहीं प्रेम है तभी कुछ टिकता है संसार में। घर गृहस्थी में विवाह करते हैं, पत्नी से प्रेम है तो थोड़े दिन काम चलता है, फिर थोड़ा झगड़ा होता है तब बच्चा पैदा होता है, बच्चे में प्रेम होता है तो हम उधर ही बैठे रहते हैं, वो प्रेम का समय समय के ऊपर बदलता रहता है इस तरह। तो प्रेम चाहिए, तो आत्म साक्षात्कार के बाद भगवत प्रेम जागृत होगा तभी आदमी कहीं भी रहे आनंद से रह सकता है। तो आत्मरति बुद्धस्य बुद्धिमान वो है जिसने अपनी बुद्धि भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान को उसमें बिठा दिया है। भीष्म पितामह वाले भाव को बड़ा अद्भुत भाव है कि भगवान मेरी बुद्धि मैं आपको अर्पण करता हूँ, ये समझ लो मेरी कुंवारी कन्या है, इसको मैंने संसार में कहीं भटकने नहीं दिया है और आप इसको स्वीकार करो। फिर हाथ जोड़ के कहते मेरा पुत्र तो है नहीं, इसलिए आप मेरे घर जमाई बनो, इसका मतलब आपके मेरी बुद्धि में बैठ जाओ, घर में ही रहो, मेरे दिल में ही रहो, जाओ नहीं कहीं, मतलब भगवान हमारे हृदय में आप आके विराजमान करो, मेरी बुद्धि को वरण करो। यही तो रोज गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन वरेण्यम धीमहि, हमारी बुद्धि धीमहि, हमारी बुद्धि वरेण्यम भगवान का वरण करे, वरण करे का मतलब पति के रूप में वरण करे और उसकी सेवा करे, वरेण्यम का अर्थ होता है वर, वर का मतलब पति। तो अब पहले दो लाइन में क्या हो गया, अगर मन और इंद्रियां वश में नहीं है, वन में भी जाएगा तो उसकी छह पत्नियां, ये मन और पांच इंद्रियां साथ जाएंगी, वहां भी इसको शांति से रहने नहीं देंगी। अब दूसरी लाइन में क्या क्या, जिसकी ये इंद्रियां वश में है और आत्म साक्षात्कार में लगा हुआ है, उसको उसमें आनंद आता है तो वो बुद्धिमान है। फिर ऐसा व्यक्ति गृह आश्रम किम, वो भले गृहस्थ में क्यों ना रहे, घर में क्यों ना रहे, नु करोति अवध्यम, उसका क्या हानि होगी, अवध्यम का मतलब हानि, उसकी हानि क्या होगी, वो घर में रह के भगवान का भजन कर सकता है। ये प्रियव्रत को उपदेश है, सबको नहीं है। राज करते हुए भी आप भगवान का भजन कर सकते हैं, जनक जैसे राजा हुए, युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान नारद का सत्संग सुनते हैं और राज भी करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप प्रियव्रत अब ये विचार छोड़ के राज करो, पिताजी की आज्ञा का पालन करो, ये इसका भाव आगे है। तो श्लोक का अर्थ समझ में आ गया, आप श्री प्रभुपाद जी के इस अर्थ को पढ़ते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है, वो उस राजा के समान है जो अपने किले दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। इसलिए कभी कभी गृहस्थ को दुर्ग कहते हैं, किला कहते हैं, गृहस्थ आश्रम को किला कहते हैं, और वो दुर्ग इसलिए है कि उसके अंदर उसको संयम से रहना पड़ता है, उसको भटकने से बचा लेता है, उसकी मन इंद्रियां कहीं और भटकेंगी नहीं। इसलिए श्री प्रभुपाद का शिक्षाओं में था कि बच्चियों की अगर छोटी उम्र में ही मंगनी कर दी जाए, उसको पता लगे कि यही मेरे आगे चल के पति होगा, तो उसका मन इधर उधर भटकेगा नहीं हर बच्चे को देखकर। इसलिए पुराने ज़माने में इस तरीके से पहले ही संकल्प कर लेते थे कि हमारी कन्या का विवाह तुम्हारे को लड़के के साथ होगा, तो क्या लड़के को विचार आता था कि और कोई कुछ सोचना है, बड़ा होते ही उनका मन पहले ही वहाँ टिक जाता था। तो ये मानसिक भी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में ये है, लेकिन ये प्रैक्टिकली आजकल नहीं हो रहा है, इसलिए विवाह चल नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी समस्याएं उसके अंदर आ रही हैं, क्योंकि पहले से ही मन 10 जगह भटका हुआ हो, चाहे कुछ करे नहीं लेकिन मन तो जा रहा है ना, ये ठीक है, इससे शादी करनी चाहिए, इससे नहीं करनी चाहिए, तो मन के अंदर तो ये सब जो निशान पड़ जाते हैं ना। तो इसे पुराने ज़माने में, हमारे किसी ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि बचपन से ही मंगनियाँ हो जाती थी, पता शादी भले बाद में हो, लेकिन उससे एक बात होती थी कि मन मेंटल करप्शन नहीं होती थी। सो गृहस्थ आश्रम दुर्ग है, वहाँ 6 शत्रुओं से सुरक्षित रहता है व्यक्ति, और 6 शत्रुओं कौन है, मन और इंद्रियों रूपी 6 शत्रुओं से सुरक्षित रहता है घर के अंदर। गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा काम इच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है। लेकिन इस श्लोक में प्रभुपद जी के तात्पर्य में पहली दो लाइन का इवन इफ वन गोज टू द फॉरेस्ट, देखो नहीं लिखा है हिंदी में, मैं सही पढ़ा है, देखो 17 ही पढ़ा है कि कुछ और पढ़ा है, और कुछ पढ़ रहा हूँ, ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो कुछ बात कुछ और ही है, 17 तो लिखा है गृहस्थ आश्रम में रहकर आगे का नहीं भैया, 17 पढ़ रहा हूँ, देखो ये पढ़ो, आ जाओ बुद्धिमान लोग पढ़ो, आ जाओ देखो क्या लिखा है श्लोक के अर्थ में, पहले पढ़ो, पूरा पढ़ो, है क्या इसमें कहीं वन में जाना लिखा है क्या, पढ़ो जरा, हाँ यही है ना 17 है ना, पढ़ो, हरे कृष्ण,
जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है,
ये नहीं नहीं वो नहीं पढ़ो, 17 का ये, अच्छा मैं 16 पढ़ा था क्या, मैं कौन सा पढ़ा,
आप 16 पढ़ो,
हाँ हाँ इसका अनुवाद कहाँ है, हाँ मैं इसका पढ़ लिया आगे वाले का, अच्छा आप पढ़ो, इवन इफ वन गोज टू दी, ठीक है कल वाले का पढ़ा है,
जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है भले ही वह बन पर विचरण करता रहे तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञान इंद्रियां इन 6 सपत्रियों के साथ रह रहा होता है, किंतु आत्मपुष्ट विद्वान जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे ग्रस्त जीवन कोई क्षति नहीं पहुँचा पाता।
चलो जी वो दूसरे तरफ वाला पढ़ा, हाँ हमारा दिमाग तो घूम गया, अरे कृष्ण, तात्पर्य तो समझ में आ गया, ठीक है अब तात्पर्य पढ़ते हैं, ये अनुवाद हो गया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है कौन सा, ग्रहे ना? ग्रहे वा वने थाके, घर में रहो या वन में रहो, हा गौरंगा बले डाके, भगवान श्री चैतन्य मा का गुणगान करते रहो, हरि बोलते रहो, अगर ये साधन करेंगे तो घर में रहें या वन में रहें, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कुछ को कहा था जो गृहस्थी प्रभु महाप्रभु के पीछे आना चाह रहा था, कूर्म ब्राह्मण था कौन, क्या बोला उसको, स्थान स्थित जो आश्रम है वर्ण है उसी में रहो और भगवान का गुणगान करते रहो, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो मिले जिसको मिले उसका कृष्ण उपदेश करो, कोई घर बदलना और आश्रम बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी को कई बार शिशु ने लिखा कि घर गृहस्थी में हमारे कुछ बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, अब हम सोचते हैं कि भजन नहीं हो रहा है, बोला अगर आपने गृहस्थ में प्रवेश किया है तो उसकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए, उसका दायित्व निभाना चाहिए, अब यहाँ छोड़ के और फिर दूसरी शादी करोगे ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा मन यहाँ टिक जाएगा, जब यहाँ नहीं टिक रहा है तो वहाँ कैसे टिकेगा, तो ये बहुत आसान नहीं है, तो यहाँ जो कहीं भी रहो लेकिन भगवान का नाम लो तो फिर आप विचलित नहीं होंगे, चाहे कोई वन में रहे या घर में, यदि वो श्री चैतन्य की भक्ति में लगा हुआ है तो वो मुक्त पुरुष है, श्री चैतन्य की भक्ति में लगा हुआ है तो वो मुक्त पुरुष है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, असल में चैतन्य की भक्ति में लगा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कैसे होती है, चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है हरे कृष्ण मंत्र से, उनको अर्पण क्या करना है, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चैतन्य महाप्रभु की भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति हरि नाम संकीर्तन है, क्योंकि वो ही लाए हैं और उसी से उनकी संतुष्टि होती है, उनकी पूजा भी उसी से होती है, और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दो ही प्रकार के है, ये है यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र है यज्ञ, और यज्ञ है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान हो गए प्रसन्न यज्ञ करने से चैतन्य महाप्रभु, लेकिन कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें सारे देवता भी आते हैं, उनका भी भाग होता है। शंकर जी भी चाहिए, ब्रह्मा जी का भी भाग चाहिए, अन्य देवताओं का भी भाग चाहिए। वो कैसे प्रसन्न होंगे? बोला यज्ञ के बाद शेष प्रसाद उनको दे दिया करो, संकीर्तन करके फिर प्रसाद वितरण करो और प्रसाद सबको दे दो, तो ये यज्ञ आपका पूरा हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ा, ये श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में ऐसे ही इसका अर्थ शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, जहाँ दक्ष यज्ञ का वर्णन हो रहा है, अभी हम पढ़ा रहे हैं भक्ति वैभव वालों को, वहाँ सीधा ऐसे लिखा है कि ऐसे हरिनाम संकीर्तन करना ये हमारा यज्ञ है, और प्रसाद वितरण करना, इससे सारे देव देव देवी देवता मनुष्य ये सभी संतुष्ट अपने आप हो जाते हैं। और फिर शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अपने अनुभव से कि हमने ये हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार दो ही चीज़ों के माध्यम से किया, एक तो मधुर भगवान के नाम का कीर्तन किया और फिर लोगों को प्रसाद वितरण किया। तो ये दो बड़े भारी साधन है चेतना महाप्रभु की भक्ति के। तो चेतना महाप्रभु की भक्ति के दो ये मोह और मुख्य साधन है, हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण। और श्री प्रभुपाद जी अनुभव से इसी यही साधनों से बंद में नहीं रहे, वृंदावन छोड़ दिया प्रभुपाद ने, एक दृष्टि से शरीर वो फिजिकली कहा जाए और न्यूयॉर्क के शहर में रहे हैं, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कर रहे हैं। यहाँ से गए तो जलदूत में शिला प्रभुपाद के साथ चैतन्य चैतन्य था, उसी को पढ़ते हुए जा रहे थे, और वहाँ उतर के पहला काम क्या किया? हरिनाम संकीर्तन किया बैठ के। और एक दिन तो प्रभुपाद जी कह रहे थे, ब्रह्मानंद सुनो, हमारे पास पहले प्रसाद के लिए भी कुछ नहीं था, एक सेब हुआ करता था कहीं से, तो उसके 20-25 टुकड़े करके थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद देते थे। बाद में तो बहुत प्रसाद भी हो गया, लेकिन वो प्रसाद भगवान का एक छोटा सा एप्पल सेव बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन को स्थापित करने का कारण बन गया। तो ये बहुत मुख्य है। प्रभुपाद जी बैठे न्यूयॉर्क में बैठे, कह रहे आप क्या समझते हो मैं अमेरिका में हूँ? नहीं, मैं वृंदावन में हूँ। बोला क्यों आप तो यहाँ? बोला ऐसे शरीर से यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरा हृदय वृंदावन में है। और फिर कहा वृंदावन चेतना है, वृंदावन जगह नहीं, वृंदावन चेतना है। वृंदावन चेतना क्या है? वृंदावन में रहने वाले सब कहते हैं हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, कृष्ण की कैसे सेवा करें। राधा रानी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है, यशोदा माँ कृष्ण को सुखी करना चाहती है, नंद बाबा कृष्ण को सुखी कर, गाय कृष्ण को सुखी करना चाहती है, बंदर हिरणिया जीव जो भी है ब्रज में वो कृष्ण के आनंद के लिए और दूसरों को कृष्ण की सेवा में लगाने में सुख लेते हैं, इसलिए वृंदावन कॉन्शियसनेस है। और वन में जाने के लिए भी प्रभुपाद हम गौड़िया वैष्णव के लिए हमारा वन है वृंदावन, जहाँ वन में जाने की बात आए तो वृंदावन में जाना है। और क्या करना है? चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करनी है। कैसे करनी है? हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण। तो ये यज्ञ हो गया। तो चेतना महाप्रभु की भक्ति करे, ये बहुत बड़ा भारी शब्द है। चेतना महाप्रभु की भक्ति राधा कृष्ण की भक्ति है, क्योंकि चेतना महाप्रभु राधा कृष्ण है, लेकिन राधा कृष्ण का चिंतन करना इतना आसान नहीं है। इसलिए कहा है पहले नवदीप में रहकर दास भाव से गौरंगा महाप्रभु की कब नित्यानंद गौरंगा कृपा करेगा कि हम वृंदावन में राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करेंगे। ये साधन है कि जब उनकी कृपा होगी तब वो वृंदावन में, कौन सा भजन है ये, नित्यानंद कभी कृपा करेगा, गौरंगा बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बहे नीरा, कभी गौर चंद्र कृपा करिबो और निताई चंद्र कृपा करिबो, संसार वासना तुच्छ है और वृंदावन हरिबो राधा कृष्ण। ये जो भाव है ये है महाप्रभु की भक्ति है, शब्द नहीं है, ये भाव है। तो उनकी कृपा से ये होगा। और नित्यानंद कृपा कैसे करते हैं, कब करते हैं? जब जगाई माधाई जैसे लोगों के ऊपर प्रचार करने के लिए आप प्रयास करते हो। नित्यानंद की कृपा चाहिए तो ऐसे पतितों के उद्धार के लिए आप जोखम मोल लो, खतरा उठा लो। प्रभुपाद ने बहुत बड़ा खतरा उठाया। 70 साल की आयु में वृंदावन से अमेरिका में और पानी के जहाज़ में जाना कितना बड़ा जोखम उठाया। और जगाई मधाई तो दो थे, वहाँ तो सारे ही जगाई मधाई थे। उनके बीच में बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करना और माया से इतना बड़ा युद्ध और अमेरिका में जाके छोड़ना, छेड़ दिया युद्ध, छेड़ दिया बहुत बड़ा जाके, तो ये बहुत बड़ा उनकी जो इतना उद्धार की जो भावना थी, तो नित्यानंद की अति अति कृपा हुई। और प्रभुपाद यहाँ वापस अपने घर वृंदावन में आए, वो अपने घर मानते थे इसको, तो यहीं आके विश्राम किया। तो गौरंगा भक्ति ये है, ये गौरंगा भक्ति करेगा तो कहीं भी रह सकता है, मुक्त पुरुष है। ये प्रभुपाद के अपने जीवन में देख सकते हैं। वो ये उन्होंने अपना ये सिद्धांत क्या बताया, बॉम्बे मेरी ऑफिस है, आज भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ पूरे भारत में उसका मुख्य केंद्र बॉम्बे है, वही ऑफिस है, ऑपरेट करती है आज भी। हमारा सारा पूरे भारत के मंदिरों का संचालन का नेम वहीं बनता है और वहीं जाना जाता है सब हिसाब किताब। और कहा वृंदावन मेरा घर है, यहीं उनकी समाधि है, अपने घर में विश्राम कर रहे हैं। और मायापुर मेरा पूजा का स्थान है, मायापुर में मैं पूजा का स्थान है, इसका मतलब गौरंगा की भक्ति कर रहे हैं ना, तो उनके भाव को स्पष्ट करके देखना चाहिए। और फिर आप वन में रहो, वृंदावन में रहो या न्यूयॉर्क में रहो, कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर तो आप नरक में भी चले जाओ तो भी कोई अंतर नहीं पड़ना, वहाँ के लोग भी सुखी हो जाएंगे। कहते युधिष्ठिर महाराज थोड़ी देर नरक के अंदर से गए और एक मिनट रुक गए तो लोग बड़े खुश हो गए कि महाराज थोड़ी देर और रुको, अभी तो आपको आपके आने से यहाँ दुख नहीं हो रहा है। महाराज ने कहा तो फिर मेरे को यहीं रहने दो, आप सुखी हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है, ऐसा कहीं वर्णन आता है। तो भक्त जब ऐसे स्थान में जाता है तो भी उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कुछ भी नहीं हो सकता है वहाँ, क्योंकि उनको विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है। और भगवान मेरे साथ है, जहाँ भक्त जाता है वो तीर्थ बना देता है, उस स्थान को ही तीर्थ बना देता है, तो जीवन मुक्त है। यहाँ भी इसी को दोहराया गया है, यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया गया तो योगी बनने के लिए वन में जाना निरर्थक है, बेकार है। किसके वन में जाने को भगवान ने कहा अभी तक तुम कच्चे हो? नारद को। नारद 5 वर्ष का बच्चा, भक्ति वेदांतों का उपदेश 4 महीना सुनने के बाद माता के देहांत को माना भगवान की कृपा, और वन में निकल पड़ा और बैठा, ऐसे वन का वर्णन भी बड़ा भयानक है, और जैसे बैठा भगवान का दर्शन हुआ और फिर दर्शन नहीं हुआ तो बड़ा झटपटाया, फिर वही मंत्र उच्चारण किए, वही स्नान किया, वही आचमन किया, वही करन्यास, वही अंगन्यास, कुछ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी ने क्या कहा, अरे कच्चे हो। कच्चे किस बात में हो? बोला वन में भटक रहे हो। क्यों भगवान, मैं सब जगह नहीं हूँ। वन सतोगुण में होता है, वन सतोगुण में होता है, वन का निवास सतोगुण का है और भगवान गुण अतीत हैं, तो भगवान को पाना वन में संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ सतोगुण है और भगवान सतोगुण में नहीं है, भगवान सतोगुण से ऊपर जाने से प्राप्त होते हैं। इसलिए नारद कच्चा, कि तुम वन में क्यों मेरे को ढूंढने आए, क्या तुम्हारे को मंदिर में नहीं मिलूंगा, घर में नहीं मिलूंगा, कि मैं सब जगह नहीं हूं। वन गुणों में आता है, ये 11वें स्कंद में है कि सतोगुण का व्यक्ति वन में नदी के किनारे एकांत में रहना पसंद करता है, रजोगुण का व्यक्ति महानगर के बीच में रहना पसंद करता है, और तमोगुण का व्यक्ति वैसन वाले स्थानों के पास रहना पसंद करता है, लेकिन त्रिगुणों से जो ऊपर होता है वो मेरे घर में रहता है, मेरे मंदिर में रहता है। निर्गुणा मम निकेतनम, मेरे घर में रहता है निर्गुण। तो सतोगुण भी वन सतोगुण में आता है, निर्गुण में नहीं आता है, लेकिन भगवान का मंदिर त्रिगुणों से ऊपर है। केवल वन में नहीं, यहाँ वन में नहीं, मंदिर में रह रहे हैं हम, वृंदावन में रह रहे हैं लेकिन कृष्ण बलराम के शरण में रह रहे हैं, तो ये उसके साथ मुख्य। केवल वृंदावन में रहना नहीं, भगवान के मंदिर में रहना, ये भगवान का घर है वृंदावन, फिर भी सामान्य वंश तो नहीं है, ये मुख्य भगवान का निज घर है। फिर भी ये बहुत बड़ा मुख्य है कि केवल वन में रहना वो इतना लाभदायक नहीं है, क्योंकि अनियंत्रित मन तथा इंद्रियां उसके साथ जा रही होती हैं। इसीलिए ग्रस्त जीवन त्याग कर वन में रहने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं होगा। ये कथा याद करनी चाहिए जो प्रभुपाद जी बताते। कौन सी वाली? गया था साधु वन में तपस्या करने के लिए, एक ही था बेचारे के पास, लंगोटा सूखा था तो चूहा खा गया। तो कोई महात्मा के पास आया, महाराज कोई सेवा, बोला दूसरा एक कपड़ा एक दूसरा दे दो, क्योंकि एक चूहा ले जाता है, हाँ सुखाता था हूँ तो बंदर ले जाता है। इसलिए कहते ब्रज को बास बड़ो कठिन मोरे भाई, बाहर बंदर अंदर चूहा चोर बड़ो दुखदाई। अगर बाहर आपने अपना गमछा भी सुखाया तो बंदर फाड़ देगा, और अंदर रखा तो चूहा खा जाएगा, दोनों से बच गया तो चोर ले जाएगा। तो ब्रज को बास बड़ो कठिन मोरे भाई, ये बहुत आसान नहीं है। तो एक कपड़ा दूसरा लिया तो फिर अब क्या करें, अब चूहा काटता है, पहले तो बाहर बंदर से डर था, तो अब चूहा काटा तो चूहे को चुप कराने के लिए क्या किया बेचारे ने, बिल्ली लाया, और बिल्ली के लिए दूध, और फिर गाय, और गाय के लिए फिर घर वाली। तो अब वो वन में गया था लेकिन उसका दिमाग तो साथ ही गया कि नहीं गया। ये कथा तो प्रभुपाद जी जो कहते थे ये सत्य है कि नहीं? कहीं भी जाए लेकिन उधर ही वन में जाके भी आए थे वृंदावन में, लेकिन यहाँ भी वो भगवान का भजन भूल गए और कुछ अस्पताल खोल के और दुकानदारी दूसरी चालू कर दी, तो काय के लिए थे? जो आने का उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए ग्रस्त जीवन त्याग करके वन में रहने में लाभ नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत के ऊपरी भागों को वणिक जन बंगाल जाया करते थे। अतः एक परिचित कहावत है, प्रभुपाद जी लिखेंगे पहले लोग बंगाल में क्या होता था, वो जूट सनी जो है उसका बिजनेस, ब्रिटिश भी वहाँ से जूट ले जाता था, बंगाल में जूट होता है ज़्यादा, जैसे बोरियाँ वोरियाँ बनती है ये, तो वणिक वहाँ जाते थे कि वहाँ जाएंगे तो हमारा अच्छा धंधा चलेगा। तो बंगाल में एक कहावत है, प्रभुपाद जी बंगाली कहावत कह रहे हैं, यदि आप बंगाल जाते हैं तो भाग्य आपका पीछा करता है, अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम इंद्रियों को वश में रखें, किंतु वे बिना भगवत भक्ति के वशीभूत नहीं होती। अतः हमारा परम कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाएं। वो बंगाली भाषा का अर्थ तो समझ में आया, आप बंगाल जाएंगे तो आपका भाग्य तो साथ ही जाएगा ना। हमें याद है एक महात्मा कहा करते थे, जब भारत का विभाजन हुआ तो बहुत से लोग स्थानांतर हुए, एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ गया। बंगाल के कुछ लोग बांग्लादेश में रह गए, कुछ बंगाल में यहाँ आ गए, और विशेष रूप से पंजाब के लोग आधे इधर उधर आधे हो गए, और सिंध पूरा प्रांत इधर इधर आ गया वहाँ से। तो एक व्यक्ति अनुभव से कह रहा था, जो लोग वहाँ बहुत बड़े धनी थे, जिनके पास फैक्ट्रियाँ थी, बड़े कारखाने, ज़मींदार थी, वो सब कुछ छोड़ के जब यहाँ आए तो 6 महीना 12 महीना तो बड़ा दुखी गुजारा, लेकिन आज फिर उनके पास वहाँ जो था उससे 100 गुना ज़्यादा पड़ा है। इसका मतलब ये है कि भाग तो उनका साथ आया ना, धरती तो छोड़ के आए लेकिन भाग तो उन्हीं का साथ उनके साथ आया ना। आज भी वहाँ यहाँ बहुत बड़े सुखी धनी ज़मींदार सब कुछ है, तो आप कुछ छोड़ के एक जगह दूसरी जगह जाओगे तो आपका भाग आपके साथ ही जाएगा ना। अच्छा है तो कहीं भी जाओ अच्छा बनेगा, और नहीं अच्छा है तो आप कहीं भी जाओ तो जैसा हाल है वैसा ही रहेगा। भाई मैं उधर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये सोचने से आपका भाग साथ में जाएगा। ये प्रभुपाद, और फिर कहा श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य यह है कि इंद्रियां और मन वश में नहीं करेंगे तो कभी भी कहीं भी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। अतः हमारा परम कर्तव्य है कि अपने इंद्रियों को भक्ति में लगाएं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति का अर्थ है कि ईश्वर को, ईश्वर की सेवा में विशुद्ध इंद्रियों का लगना। तो भक्ति का परिभाषा बता रहे हैं कि भगवान की इंद्रियों को संयम में करना, भगवान की इंद्रियों को सुख देना भक्ति है। अपनी इंद्रियों के सुख के लिए भागने का नाम है काम, और भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि को प्रेम बोलते हैं। कृष्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना ये भक्ति और प्रेम है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना ये काम है। तो ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भगवत भक्ति उच्यते। यहाँ पर ब्रह्मा जी ये इंगित करते हैं कि इंद्रियों को वश में किए बना वन में जाने की अपेक्षा श्रेयकर होगा कि उन्हें ईश्वर की सेवा में संलग्न किया जाए। गृहस्थ आश्रम ऐसे आत्मजयी पुरुष मतलब मन में वश में किया हुआ पुरुष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे संसारिक बंधन में नहीं डाल सकता। शिला रूप गोस्वामी ने इस स्थिति को आगे स्पष्ट किया है। क्या बताया शिला रूप गोस्वामी ने? ये जो श्लोक है, इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्व अपि अवस्थितो जीवन मुक्त स उच्यते। हरेर दास्य, भगवान का दास है, किससे? कर्म से, मन से और वाणी से। इसको भक्ति की, ये भक्ति का सूत्र है। 11वें अध्याय भगवत गीता का आखिरी श्लोक भक्ति का सूत्र है। मत कर्म किन मत परमो भक्त मत भक्त मद भक्त। ये तीन चीजें हैं। पहला है मत कर्म, शरीर से मेरे लिए काम करो। मत परमो, मैं मन से मुझे पाना तुम्हारा जीवन हो। मद भक्त, मुझसे प्रेम करो। ये भक्ति का सुंदर सूत्र है। और इस भक्ति की मूर्तिमान है यशोमती मैया। जब दामोदर के लिए दही का मंथन कर रही है तो शरीर से मंथन कर रही है, मन से कृष्ण को मक्खन खिलाऊंगी ये चिंतन कर रही है, और वाणी से कृष्ण का गीत गा रही है। तो मनसा वाचा, मनसा काया मनसा वाचा, काया मनसा वाचा, तीनों यशोदा माँ के भगवान की सेवा में लगे हैं कि नहीं? मंथन हाथ से कर रही है, शरीर लगा हुआ है, मन से कृष्ण का चिंतन कर रही है, आज मेरे हाथ का माखन खाएगा, कहीं चोरी करने नहीं जाएगा, और वाणी से कृष्ण के गुणगान कर रही है। तो ये भक्ति का सूत्र है। और रूप गोस्वामी कहते हैं जो ऐसे करते हैं वो जीवन मुक्त है, उनका कोई बंधन नहीं है। यदि कोई मन सा वाचा कर्मणा ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है तो उसकी परिस्थिति कुछ भी हो उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक निष्ठावान अधिकारी तथा ग्रस्त के थे। अब प्रभुपाद जी उदाहरण किसका दे रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर का। थे तो ग्रस्त थे, और उनके बच्चे, मेरे ख्याल में आप तीन भी इकट्ठे होके इकट्ठे अपने बच्चे गिनो तो उतने नहीं होंगे। कितने थे? 10 थे, कितने? 11, 13। हरे कृष्णा, इतने बड़े गृहस्थी थे, 107वें गोस्वामी की श्रेणी में आते हैं। इतने सारे उनके ग्रंथ और उनके भजन आज भी जैसे वेद शास्त्र की वाणी हो। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि वन में जाने से वो नहीं गए, फिर भी श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक निष्ठावान अधिकारी तथा ग्रस्त थे, फिर भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दूर दूर तक फैलाकर उन्होंने जो सेवा की वो अद्वितीय है। दूर दूर का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में उनके लिखे हुए किताब अमेरिका और कनाडा की लाइब्रेरियों में पहुंचे, तो उन्होंने दूर दूर तक प्रचार किया। शिला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का कथन है। क्या कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर? हाँ, सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दुरंत इंद्रिया कल सर्प पतली प्रोत खत्तः दंष्टर्यते। ये प्रबोधन सरस्वती ठाकुर का कहना है, दुरंत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खता दंष्ट्राप जते। हमारी इंद्रियां निश्चय ही हमारी परम शत्रु हैं, अतः उनकी तुलना विषधर सर्प से की गई है। किंतु यदि विषीले सर्प के विष दंत निकाल दिए जाएं तो वो डरावना नहीं रह जाता। इसी प्रकार यदि इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी हैं तो उनके कार्यों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में तो भक्त इसी जगत में भ्रमण करते हैं, किंतु चूंकि उनकी इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी रहती है इसलिए वे इस जगत से सदा विलग रहते हैं, वे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा हुआ। आप सबके लिए प्रभुपाद ने कहा, वन में रहो या शहर में रहो, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण करते रहो, वो जगह वृंदावन अपने आप हो जाएगी। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा।